नमस्कार। CFTRI की अपनी इस पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है। थाली टेल्स आपको पोषण, खाद्य अनुसंधान, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा। प्रस्तुत है भाग एक, अंक चार, 24 अप्रैल 2019। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं रसीला आम, जीवन में मिठास भरती चीनी, इथिलीन, आकार में छोटी पर बड़ी असरदार, और कृत्रिम रूप से आम को पकाने के विषय पर डॉक्टर विट्ठल बी कुरचिकर से एक वार्ता।
आम का लालच स्वास्थ्यवर्धक है। तो श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बसंत आ चुका है और हमने अभी अभी चैत्र शुक्लादि से भारतीय नववर्ष की शुरुआत की है, तो हमारे पास आपके लिए खास क्या है? जाहिर है, गर्मियों का आगमन होते ही हवा में कुछ खास आ जाता है, क्योंकि हमारे इस ग्रीष्मकालीन फल में कुछ भी आम यानी साधारण नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फलों के राजा एवं भारत के राष्ट्रीय फल आम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीष्मकाल वर्ष का वह समय होता है जब वातावरण मिठास से भरा हुआ एवं विभिन्न सुगंधों एवं स्वाद से तरोताजा होता है। पक्षी वसंत गीत गाते हैं, उज्जवल खिले हुए फूल खुशनुमा सुमा बांधते हैं और बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में बाहर खेलते नजर आते हैं। इन सभी के बीच सर्वाधिक प्रिय भारतीय आम या मंगीफेरा इंडिका को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। आपको सुनकर यह गर्व होगा कि भारत आम के उत्पादन में अग्रणी है। आम स्वास्थ्य लाभ, पोषण और मन को भाने वाले संवेदी गुणों से भरपूर है। यह फल हमारे सांस्कृतिक ताने बाने में का गहराई से समाया हुआ है। यह हमारी अपनी मिट्टी में उपजा पूर्णतः स्वदेशी सुपर फ्रूट है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 1500 किस्मों के आमों की खेती की जाती है। इनमें से 1000 वाणिज्यिक और निर्यात के लिए उपजाए जाते हैं। सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध किस्में हैं पंजाब से बॉम्बे ग्रीन मैंगो, महाराष्ट्र से अल्फोंसो, पश्चिम बंगाल से हिमसागर और किशनभोग, गुजरात से केसर, कर्नाटक से तोतापुरी और बादामी, आंध्र से बंगनापल्ली, यूपी से लंगड़ा और दशहरी, और हिमाचल प्रदेश से चौसा आदि। यह उन कुछ फलों में से एक है जिसकी खपत सर्वाधिक होने के बावजूद इसे 80 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। और यही कारण है कि दुनिया भर के लोग हमारे सुनहरे रूप वाले आम के अविस्मरणीय स्वाद का आनंद उठाते हैं। कई विशेषताओं में से भरा हुआ गूदेदार और रसदार फल होने के नाते प्रत्येक आम और इसकी हर किस्म को खाने का एक शानदार अनुभव होता है। इसका स्वाद इतना संपूर्ण है कि आपको अपने स्वाद ज्ञानेंद्रियों को प्रलोभित करने के लिए किसी अन्य चीज की कोई आवश्यकता नहीं। कच्चे हरे आम का उपयोग पेय पदार्थ, चटनी, मसाला मिश्रण या करी में खटाई के रूप में किया जाता है। पके हुए आम को मीठे रूप में जैम, जेली, शरबत और रस के रूप में पसंद किया जाता है। आम चाहे पका हो या कच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी यह फल गर्मी के मौसम में बहुत अधिक खाया जाता है। आम चाहे जितना भी खट्टा हो या अत्यधिक मीठा भी हो, एक कट्टर आम प्रेमी इसकी मूल पहचान को बनाए रखते हुए इसे अन्य पदार्थों के साथ मिला के इसे खाने के तरीके ढूंढ ही लेता है। और गर्मी की छुट्टियां वो तो बिना आम के कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, यह एक तथ्य है कि हम सभी आम के स्वाद का भरपूर मजा लेते हैं। और अब हम आपको इस सुपर फूड का दीवाना होने के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाते हुए कुछ ठोस कारण बताते हैं। आम सिर्फ एक कप में 100% दैनिक जरूरत के बराबर विटामिन सी प्रदान करते हैं। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर और पेक्टिन होते हैं। ये दोनों आंतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एवं आसान पाचन हेतु प्रीबायोटिक पदार्थ के रूप में मदद करते हैं। और क्योंकि ये हमारे रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, वे हृदय रोगों और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को भी कम करता है। इसमें उच्च पोटेशियम की मात्रा रक्तचाप को नियंत्रित करने और स्वस्थ हृदय गति बनाए रखने में मदद करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स की उपस्थिति जैसे क्वेरेसिटिन, एस्ट्रेगलिन, गैलिक एसिड और कैरेटिनॉइड यानी फलों का पीला वर्णक आदि इसे सुपरफूड के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर से लड़ने में सहायक होते हैं। यह स्वस्थ आंखों और हड्डियों के विकास के लिए विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। हमें अपने दैनिक आहार में 400 mcg फोलेट की आवश्यकता होती है और आम हमारी 71 mcg की मात्रा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जो कि एक समय में सिर्फ एक स्रोत से प्राप्त मात्रा की तुलना में अन्य फलों को खाने से प्राप्त मात्रा से अधिक है। अन्य उष्णकटिबंधीय फलों से होने वाली एलर्जी के विपरीत आम के सेवन से मांसपेशियों में कमजोरी की संभावना कम होने के साथ साथ अस्थमा होने का जोखिम भी कम होता है और इसके सेवन से किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। तो अगली बार जब आपको कुछ मीठा और चटपटा खाने की लालसा हो तो इसके स्वादिष्ट गूदे का लुत्फ उठाएं और याद रखें कि आम का लालच हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है।
चीनी जिंदगी मिठास से भरपूर है। प्रिय श्रोतागण, हाल ही में हमने मिठास के विषय पर बात की थी। इस खंड में हम चीनी के इतिहास और उसके विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करेंगे। जन्म से ही मनुष्य मिठास या मीठे खाद्य पदार्थों की तरफ आकर्षित होता रहा है। कारण यह है कि हमारी जीवा की सभी 10,000 स्वाद कलिकाओं में मीठे पदार्थों के लिए विशेष रिसेप्टर होते हैं। मीठे पदार्थों के कारण यह स्वाद कलिकाएं न्यूरोट्रांसमीटर्स निकालती हैं, जिनके कारण मस्तिष्क के प्लेजर सेंटर्स सक्रिय हो जाते हैं। सदियों से हमारे पूर्वज मीठे फल और सब्जियां उगाते आए हैं। उन्होंने बेरीज, अंजीर, खजूर, मेवे और गाजर के रस, कैरोप, द्विफल यानी मैपल और खजूर के पेड़ों से निकलने वाले द्रव पदार्थ, फूलों और मीठी जड़ी बूटियों के पत्तों और बीजों से निकलने वाले रस के प्रयोग से व्यंजनों को और मीठा बनाया है। समय के साथ साथ हमने मिठास प्रदान करने वाली वस्तुओं का उत्पादन करना और उन्हें बेहतर तरीके से उगाना सीखा है। अनाज से माल्टोस, अंगूर से ग्लूकोज, फलों बेरीज और भुट्टे से फ्रक्टोज तथा गन्ने और चुकंदर से सुक्रोज इसके कुछ उदाहरण हैं। और हाँ, मधुमक्खियों की मदद से शहद का भी उत्पादन किया गया है, जो कि संसार में मिठास का पहला प्राकृतिक एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। रासायनिक मूल के अनुसार चीनी सुक्रोज नामक अणु है। अधिकतर पौधों में सुक्रोज पाया जाता है, परंतु उसकी अधिकतम मात्रा सैकरम के पौधे में पाई जाती है, जो कि दिखने में बांस के पेड़ की तरह होता है और घास परिवार का सदस्य है। माना जाता है कि इस पौधे का उद्भव दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है। सैकरम का अर्थ यूनानी भाषा में मीठा होता है। शुगर शब्द का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। अपरिष्कृत रूप से बनी मीठी वस्तु का संस्कृत नाम गुड़ है, जिसका अर्थ गोले के आकार में बदलना या संगुटिका बनाना होता है। परंतु यह वो चीनी नहीं है जिसका हम सेवन करते हैं, क्योंकि गुड़ पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता और हमारे द्वारा खाई जाने वाली चीनी इसका क्रिस्टल रूप है, जबकि गुड़ एक मीठा गोला है। लगभग 1500 ईसा पूर्व के दौरान गन्ने की खेती एवं गन्ने के उत्पादन से संबंधित अभिलेख बंगाल में पाए गए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार चीनी के क्रिस्टलीकरण की खोज भारतीयों द्वारा 350 ईस्वी में हुई है, जबकि कुछ का दावा है कि यह प्रक्रिया चीन में 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। ऐतिहासिक अभिलेखों में चीनी के एशिया से यूनान तक पहुंचने का वर्णन है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब सिकंदर इंडस नदी के किनारे अपनी टुकड़ी के साथ आए तो उनके सैनिकों ने पूर्व की ओर बढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोगों को गन्ने की खेती एवं उससे दानेदार नमक जैसे मीठे चूरे को बनाते हुए देखा, जिसे स्थानीय तौर पर शक्कर या शर्करा कहा जाता था और यूनानी भाषा में इसे सैकरोन कहा जाता था। वापसी की यात्रा के समय वे सैनिक अपने साथ गन्ने ले आए, तो इसी प्रकार गन्ना यूरोप पहुंचा और सैकरम शब्द का प्रवेश यूनानी शब्दकोश में हुआ। चीनी 18वीं सदी तक विश्व के अनेक भागों में एक महंगी वस्तु थी।
जिसका उपयोग केवल धनी और समृद्ध लोग ही कर सकते थे। 18वीं सदी में यूरोप में टेबल शुगर की मांग बढ़ने लगी और 19वीं सदी के आते आते यह मनुष्य की सामान्य आवश्यकता बन गई। आज के समय में गन्ना एवं चुकंदर टेबल शुगर के प्रमुख स्रोत हैं। गन्ना उन सभी प्रकार की जातियों या उनके संकरों को कहा जाता है जो कि विशाल घास जीनस सैकरम तथा पोएसी फैमिली के सदस्य हैं। चुकंदर अमेरांथेसिये फैमिली का सदस्य है और इसका वैज्ञानिक नाम बीटा वल्गैरिस है। यह कंद वाली जड़ है जिसमें सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा होती है। गन्ने से मिलने वाली चीनी का अधिकतर उत्पादन भारत, चीन और थाईलैंड जैसे गर्म देशों में होता है क्योंकि गन्ने की फसल ठंडक नहीं सह पाती, जबकि दूसरी ओर चुकंदर केवल ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप, उत्तरी जापान और अमेरिका के कुछ भागों में उगता है और अत्यधिक गर्मी नहीं झेल पाता। 80% तक सुक्रोज गन्ने से तथा शेष भाग चुकंदर से प्राप्त होता है। रासायनिक तौर पर टेबल शुगर या सुक्रोज C12H22O11 एक डाइसैकेराइड है जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। ये पाचन क्रिया के दौरान अलग हो जाते हैं। अंत में ग्लूकोज के अणु रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं जहां से वह बाकी अंगों में वितरित हो जाते हैं। अंगों में शुगर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अतिरिक्त ऊर्जा वसा कोशिकाओं यानी फैट सेल्स में संग्रहित हो जाती है। मिठास के लिए सबसे महत्वपूर्ण फ्रक्टोज लिवर में चयापचयित यानी मेटाबोलाइज होता है जहां एंजाइम्स उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। टेबल शुगर के उत्पादन के लिए सबसे पहले गन्ने को उसका रस या सत्व निकाला जाता है। इसके बाद उसके अंदर की मिलावटी वस्तुओं को जैसे मिट्टी, मोम, रेशे इत्यादि को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मिलने वाले शुद्ध रस को गर्म कर उसको सांद्रित किया जाता है जिससे वह एक गाढ़े रस में बदल जाता है। ठंडा होने के बाद क्रिस्टलीकरण के कारण वह चीनी क्रिस्टल्स में परिवर्तित हो जाती है। इन क्रिस्टल्स को बाकी के मिश्रण से संकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से अलग किया जाता है। उसके बाद उसका निर्जलीकरण और पैकिंग किया जाता है। इस चीनी में सुक्रोज की मात्रा लगभग 99.7% होती है। अंग्रेजी में बच्चों की एक कविता जॉनी जॉनी यस पापा तो सबको याद ही होगी। अत्यधिक चीनी का सेवन भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संपूर्ण ऊर्जाओं से केवल 10% ही चीनी लेने का परामर्श देती है। उनके अनुसार हमें बाकी की ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त करनी चाहिए। कार्बन युक्त पेय और अन्य प्रकार के फास्ट फूड के सेवन से भी शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार चीनी ही मोटापे या ओबेसिटी और अन्य उपापचायी व्याधियों का मुख्य कारण है। तो बेटा जॉनी, अधिक चीनी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती।
इथिलिन, छोटा किंतु अत्यधिक प्रभावी। तिनका कभू न नींदिए जो पाहन तर होए, कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। आकार और प्रभाव की बातें। एक पुरानी कहावत है कि आकार में छोटा होने पर किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है, और ये कहावत इथिलीन के लिए बिल्कुल ठीक जस्ती है। हमारे शरीर में उपस्थित सभी अणुओं, रासायनिक पदार्थों एवं सभी प्राणियों में उपस्थित पदार्थों में इथिलीन ऑक्सीजन रेडिकल के बाद सबसे छोटा और सबसे हल्का है। यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इथिलीन से भारी है। फिर भी इथिलीन की उपयोगिता बहुत ही अधिक है। वास्तव में इसकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इथिलीन के बिना शायद ही कोई पौधा पृथ्वी पर पनपेगा, और बिना पौधों के हम कहाँ? हैरान हो गए ना? हम सभी जानते हैं कि प्राणियों में लगभग सभी पदार्थ कार्बन की श्रृंखलाओं से बने हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, सबकी मूलभूत इकाई है कार्बन श्रृंखलाएं, कुछ बड़ी कुछ छोटी। इथिलीन में सिर्फ दो कार्बन होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में मीथेन की तरह इसके पास भी चार हाइड्रोजन परमाणु हैं। इस प्रकार यह कार्बन यौगिकों में सबसे छोटा और हल्का है, लेकिन इसका असर अच्छा। आपने इस पुराने कहावत के बारे में तो सुना ही होगा कि टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब बाकी सबको खराब कर देता है। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सच है। वास्तव में इसका श्रेय जाता है इथिलीन को। इथिलीन का उत्पादन पौधों में, विशेषकर फलों के पकने के समय, एक उपोत्पाद के रूप में होता है और ये फल के पकने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इथिलीन के उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जैसे कि फल के किसी नुकीली चीज के संपर्क में आने से उस पर पड़ा दबाव या चोट इथिलीन उत्पादन को प्रेरित कर सकता है और इसके फलस्वरूप ऐसी क्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जिनके कारण अंत में फल पक जाता है। तो इसी प्रकार से किसी एक सेब में लगी चोट दूसरों के पकने की प्रक्रिया को प्रेरित कर सकती है और जिससे पुरानी कहावत की सत्यता सिद्ध होती है। फलों का पकना एक प्रकार से उनकी उम्र का बढ़ना ही है, एक प्रक्रिया जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता, और यह इथिलीन के उत्पादन से शुरू होता है। जैसे ही फलों की कोशिकाओं में श्वसन प्रक्रिया होती है, प्रोटीन बनाने वाले 20 अमीनो एसिड्स में से एक इथिलीन में टूट जाता है और यह अमीनो एसिड मिथियोनिन है। एसीसी सिंथेज एवं कुछ अन्य एंजाइम मिथियोनिन को इथिलीन में परिवर्तित करते हैं और इसके बाद ये गैस के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। अब प्रश्न यह उठता है, यह प्रतिक्रिया कैसे शुरू होती है? इसके लिए बहुत सारे कारक हैं। उदाहरण के लिए तापमान में वृद्धि फलों को इथिलीन उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप जानते ही होंगे कि हम चावल की बोरियों में चीकू को पकने के लिए रखते हैं, या चावल की भूसी में केले को पैक करना, या अखबार में पपीते को लपेटना। ये सब उपाय फलों पर इथिलीन की क्रिया में मदद करते हैं। चावल गर्मी पैदा करता है जो इथिलीन उत्पादन को ट्रिगर करता है। दूसरी ओर अखबार लपेटने से पपीते के आसपास पैदा होने वाले इथिलीन की मात्रा तेजी से उसकी उम्र बढ़ने अथवा पकने में मदद करती है। हाँ, पकने के लिए बहुत अधिक मात्रा में इथिलीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बहुत कम मात्रा भी फलों की सही परिपक्वता को प्रेरित कर सकती है। उदाहरण के लिए कीवी फल प्रशीतन के तहत थोड़ा इथिलीन बाहर निकालता है, जो अन्य कीवी फलों के पकने को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। इथिलीन सभी प्रकार के फलों को प्रभावित करता है, पर ज्यादातर उष्णकटिबंधीय किस्में जैसे आम, केला, पपीता और टमाटर। हम इथिलीन को सूंघ नहीं सकते, यह एक गंधहीन रंगहीन गैस है, लेकिन इसके प्रभाव वास्तव में रंगीन हैं। एक हरा आम सुनहरा पीला हो जाता है, एक हरा पपीता लाल रंग का हो जाता है। सिर्फ रंग ही नहीं, फलों की गुणवत्ता भी बदल जाती है। खट्टे और कड़वे फल मीठे और रसदार हो जाते हैं, मोहक स्वाद उत्पन्न होते हैं और फल में उपस्थित क्लोरोफिल उपयोगी विटामिन में बदल जाता है, और ये सब इथिलीन की क्रिया के कारण ही है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर इथिलीन का उत्पादन बंद हो जाए। इसके उत्पादन को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके उत्पादन को धीमा करने के प्रयास किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने एसीसी सिंथेज एंजाइम का उत्पादन कम करके धीमी गति से पकने वाले टमाटर प्राप्त किए हैं, जिनके पकने में बहुत समय लगता है। इथिलीन का उपयोग आम और केले जैसे फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। इथिलीन स्क्रबर भी आजकल उपलब्ध है, जो अत्यधिक इथिलीन को अवशोषित कर लेता है, जिससे फलों को लंबे समय तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के रखने में मदद मिलती है। तो ये सब हैं इथिलीन नामक छोटे से अणु की विशेषताएं। अगली बार जब आप सेब या आम को घर लेकर लंबे समय तक रखना चाहें तो सुनिश्चित कर लें कि वो सभी एक ही उम्र के हैं या नहीं।
कृत्रिम रूप से फलों को पकाना क्या होता है? डॉक्टर विट्ठल बी कुर्चिकर जी के साथ एक साक्षात्कार। कितना मजा आता है ना, सुनहरे पीले मुंह में पानी ले आने वाले आमों की इतनी विविधता देखकर। पर जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं इनमें से सभी किस्में सीधा आम बागान से आप तक नहीं पहुंचती, बल्कि इनमें से कई ऐसी हैं जो कटाई के बाद फलों के गोदाम में रखी जाती हैं, फिर कृत्रिम रूप से इन्हें पकाया जाता है और फिर ये आप तक पहुंचती हैं। आखिर क्या होता है कृत्रिम विधि से आम को पकाना? इस दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं? क्या यह सुरक्षित है? हमने जाना डॉक्टर विट्ठल बी कुर्चिकर जी से। प्रस्तुत है उनके साथ हुए साक्षात्कार का हिंदी रूपांतरण। आम का पककर खाने के लिए तैयार हो जाना या आम की परिपक्वता दूसरे फलों से किस प्रकार अलग है?
नेचर
फल दो प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक यानी जो कटाई के बाद भी पकते रहते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब जो कटाई के बाद नहीं पकते हैं। तो आम जो है वह क्लाइमेट्रिक फल है, या केले, चीकू, पपीते तथा सेब के समान कटाई के बाद भी परिपक्व होते रहते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फल जैसे अनार, अनन्नास, नींबू, संतरा आदि।
तो इस परिपक्वता के दौरान क्या क्या होता है?
फलों का पकना एक चयापचय प्रक्रिया है जो परिपक्व फल से शुरू होती है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो पहले पौधे में श्वसन दर 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं और फिर एथिलीन संश्लेषण प्रारंभ होता है। इसे एथिलीन की बायोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया कहा जाता है। बायोसिंथेसिस के दौरान मेथियोनिन एथिलीन में परिवर्तित होता है, जो कि एक रंगहीन और स्वादहीन गैस है। यह फलों के पकने की गति को तेज करती है। अलग अलग फलों में और उनकी किस्मों में यह दर अलग अलग होती है। क्लाइमेट्रिक फलों में इथिलीन नॉन क्लाइमेट्रिक की तुलना में अधिक संश्लेषित होती है। पकने की इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अपने सरल रूपों में परिवर्तित होते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और यह भी फलों के पकने में मदद करता है।
हम जानना चाहेंगे कि पकने के बाद खट्टा फल मीठे फल में कैसे बदल जाता है।
बिल्कुल, आपको बताऊंगा। प्रारंभ में परिपक्वता शुरू कर चुके आम के फलों में स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह स्टार्च सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज में टूटते हैं, साथ ही काफी मात्रा में उपस्थित अम्ल भी सरल अम्लों में परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा अमीनो अम्ल मेथियोनिन, सक्सिनेट, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में बदल जाते हैं। फ्लेवोनॉइड और टैपेनॉइड नामक फ्लेवर यौगिक भी विकसित होते हैं। इस अवस्था में क्लोरोफिल रंजक यानी पिगमेंट जो कि आम को हरा रंग देते हैं, वे पीले रंग देने लगते हैं। वे पीला रंग देने वाले कार्टेनॉइड में बदल जाते हैं, जो कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है।
आमतौर पर आम के फलों को कृत्रिम रूप से भी पकाया जाता है। क्या कृत्रिम रूप से फलों को पकाना फलों के प्राकृतिक रूप से पकने से भिन्न है?
बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। परिपक्व आम के फलों को कटाई के बाद प्राकृतिक रूप से पकने के लिए हवा बंद एवं उष्ण स्थान पर रखा जाता है, या इसके लिए चावल की भूसी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से पकने के लिए आम के फलों को 7 से 8 दिन लग जाते हैं। दूसरी विधि है धुआं लगाना या स्मोकिंग। इस विधि से केले को भी पकाया जाता है। इसके अंतर्गत फलों के ढेर को 6 से 12 घंटे के लिए धुएं के संपर्क में रखा जाता है। ऐसा करने से आम के फल का बाहरी रंग तो परिवर्तित होता ही है, साथ ही इथिलीन भी उत्पादित होती है जो पकने की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। किंतु इस प्रक्रिया से सामान्यतः बाहरी भाग यानी छिलके का ही रंग परिवर्तित होता है, गूदे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो हुए पारंपरिक तरीके। एक अन्य तरीका है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग। कैल्शियम कार्बाइड बाजार में मसाला के नाम से मिलता है। अपने अपरिष्कृत अवस्था में यह ग्रे रंग का दिखाई देता है और परिष्कृत यानी शुद्ध अवस्था में सफेद। इसका मुख्य अवयव एसिटिलीन होता है, ना कि एथिलीन। एथिलीन पौधे का एक हार्मोन है जबकि एसिटिलीन नहीं। एसिटिलीन के अलावा कैल्शियम कार्बाइड में कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस हाइड्राइड आदि। ये दोनों ही कैंसर कारक तत्व हैं और इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड द्वारा फलों को पकाना उचित नहीं समझा जाता। यह प्रक्रिया कैसे की जाती है? फलों के ढेर को कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में रखा जाता है। पकने की प्रक्रिया के दौरान जब ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है तो फलों में उपस्थित जल वाष्पित होता है। इस वाष्पित जल का स्थान कैल्शियम कार्बाइड ले लेता है, फिर यह एसिटिलीन और कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और पीछे छोड़ देता है आर्सेनिक और फास्फोरस की सूक्ष्म मात्रा। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से पकाए गए फलों का सेवन करता है तो इन अशुद्धियों के कारण होने वाली एलर्जी, प्रतिरक्षा संबंधी रोग या दाष्ट संबंधी परेशानी से ग्रसित हो सकता है। इतना ही नहीं, कैल्शियम कार्बाइड मस्तिष्क तक ऑक्सीजन के प्रवाह को रोककर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम संबंधित विकारों का भी कारण बन सकता है। यही कारण है कि सरकार द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।
जैसा कि आपने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पकाए गए फलों का सेवन उचित नहीं है, तो फिर इस प्रकार के फलों को कैसे पहचाना जा सकता है?
देखिए, आमतौर पर ऐसे फलों को देखकर पहचानना मुश्किल है। फिर भी यदि आपको दिखे कि फल का रंग पूरी तरह समान पीला नहीं है या काटने के बाद यदि फल का गूदा समान रूप से पका हुआ नहीं है और खट्टा तथा हल्का कड़वा है, तो समझ जाएं कि यह फल कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पकाया गया है।
तो क्या कोई तरीका है जिससे इन फलों से कैल्शियम कार्बाइड को अलग किया जा सकता हो?
जैसा कि बताया गया है कैल्शियम कार्बाइड नहीं बल्कि इसमें उपस्थित एसिटिलीन फल को पकाने का कार्य करता है। फल के पकने की प्रक्रिया के बाद एसिटिलीन गैस तो नहीं रहता, परंतु इसकी अशुद्धियां पूरी तरह से फल में आ जाती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इसका प्रयोग ना ही किया जाए। इसके स्थान पर पौधे का ही हार्मोन एथिलीन फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और इसके लिए बड़े पैमाने पर एथिलीन गैस को उत्पन्न किया जाता है। एक बंद कमरे में कुछ पैमाने निर्धारित करके तथा एक समान तापमान सुनिश्चित करके कमरे में 24 घंटे के लिए 10 ppm इथिलीन गैस प्लावित यानी बलपूर्वक छोड़ी जाती है और दूसरी विधि में कुछ रसायनों का प्रयोग करके इथिलीन घोल तैयार किया जाता है और इस घोल को एक बड़े मुंह वाले बर्तन में रखा जाता है। फिर फलों को इस बर्तन में 12 से 24 घंटे तक डुबो के रखा जाता है और ऐसा करने से भी सभी फल समान रूप से पकते हैं।
क्या कैल्शियम कार्बाइड के सूक्ष्म कण पानी से धुले जाने पर हटाए जा सकते हैं?
जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी अशुद्धियां हटाना मुश्किल होता है। तो बेहतर है ऐसे फलों का सेवन ना करें जो कि कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पकाए गए हों।
धन्यवाद। तो श्रोताओं, यह था हमारी थाली टेल्स का चतुर्थ अंक। आशा है आप सब ने इसका आनंद उठाया होगा। इसकी पटकथा लिखी है श्री कोलेगल शर्मा, सुश्री नम्रता वारकेकर और डॉक्टर एन आर मंजुनाथ ने। हिंदी रूपांतरण कर अपनी आवाज दी है श्री राजदीप सिंह, सुश्री सुरुचि नौटियाल, सुश्री प्रतिभा और सुश्री वंदना ने। साथ ही YouTube और संगीत के लिए श्री शिव गणेश के प्रति हमारा आभार। थाली टेल्स CSIR CFTRI मैसूरू द्वारा तैयार और निशुल्क वितरित की जाने वाली एक पत्रिका है। आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। श्रोता खाद्य और उससे संबंधित मुद्दों पर अपने प्रश्न और सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे 08212515910 पर भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.cftri.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार तक 08212515910 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। थाली टेल्स के अगले अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। हमारी अगली मुलाकात 2 सप्ताह बाद होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।